In India, a conspiracy theory is taking hold.
Hindu ladkiyon ko apne prem jaal mein phasa kar aur unhi se shaadi kar unse hi 10-15 bacche paida kar wo apni jansankhya badhane ka karya kar rahi hai.
Hindu nationalist groups say Muslim men are carrying out a sinister plot to create an Islamic republic. And they say they'll do whatever it takes to stop so-called love jihad, sometimes with deadly consequences.
हाँ सर, एक किस्म से तो लग रहा था कि बांधवा कुछ रस्सी दिख रही थी, फिर हमको मेरे को डॉट हो गया कि सुसाइड नहीं किया मेरा भाई, कुछ तो चाल है, मर्डर किया हुआ है.
There's no evidence the conspiracy is real, but strict legislation outlawing forced conversion by marriage is now in place in states across the country.
वही लड़का तो लड़की को अपहरण करके ले जा रहा था. मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, लड़की से पूछो. मानने लगे पुलिस वाले.
101 East investigates how love is being weaponized for political gain in India. For this young Indian couple, picnics in the countryside were their only way to escape the pressures of home and society. The young woman, Shweta Kumar, is Hindu. Her partner, Arbaaz Mullah, was Muslim. In India today, such relationships can be deadly. A few weeks after the picnic, Arbaaz went missing. His cousin Sameer is showing us the railway tracks where he found his 24-year-old relative.
तोड़ने के बाद मेरा एक नज़र एक पैर के ऊपर पड़ी सर. वो देखते मैं पहचानने आ गया, यही मेरा भाई है बोलकर. फिर थोड़ा आगे गया और एक पैर था, उसके आगे हेड था. फिर साइड में देखा तो बॉडी गिरा हुआ था सर. जैसे ही बॉडी थी तो ऐसा पूरा उल्टा गिरी हुई थी सर, पूरा. पुलिस वगैरह छानबीन कर रही थी, थोड़ी रस्सी दिख रही थी. तो इससे कुछ मेरे दिमाग में आया कि ये सुसाइड नहीं किया है, कुछ तो बांधा हुआ है हाथ को. फिर हमको मेरे को डाउट हो गया कि सुसाइड नहीं किया मेरा भाई, ये कुछ तो चाल है, मर्डर किया हुआ है.
बिफोर हिज डेथ अरबाज रिसीव्ड थ्रेट्स डिमांडिंग ही ब्रेक अप विद श्वेता.
हाँ सर, प्रेशर तो ऑलमोस्ट 2 महीने से पड़ रहा था. उसको कॉल्स आ रहे थे क्योंकि अरबाज तो सर एक मुस्लिम था और प्यार किया था एक लड़की से, श्वेता नाम के गैर लड़की के. तो कुछ एक सेना या गैंग वगैरह वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों प्यार में बांधे रहे. लेकिन ऐसा लीगली देखे तो गवर्नमेंट में राइट है सर, प्यार कर सकते, शादी कर सकते. लेकिन ये लोग ऐसा होना नहीं चाहते. अगर ऐसा हो गया तो फिर सभी लोग मिल के रहेंगे तो इनका तो पॉलिटिशियंस का भी ये है ना बैकग्राउंड सर, फिर इनका नष्ट हो जाएगा. ये कुछ काम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा हिट हो जाते हैं गाँव में, फिर इलेक्शन आने के बाद सीट मिलती है, फिर आगे बढ़ते हैं. इसलिए इसको ज़्यादा एक्सपोज करना चाहता है. उसी मुद्दे में मेरा भाई को उन्होंने मोहरा बना दिया सर.
पैंट की लेस से निकाल के बांधा है सर उन्होंने.
पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स से दैट मेंबर्स ऑफ अ लोकल हार्डलाइन हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप वर बिहाइंड द मर्डर एंड दैट श्वेता'स पेरेंट्स हैड पेड देम $6,700 टू गेट अरबाज आउट ऑफ हर लाइफ.
So we are here at the Belgaum court complex and we are here to see if we can interview the president of the Sri Ram Sena Hindustan. Now that's the Hindu right-wing organization whose members have been accused and arrested by the police related to this gruesome case. We're going to try and see if we can ask him a few questions. Let's find out.
Hello sir.
Brother, brother. Ramakant Kondaskar.
Aur aapka yahan pe aap kis kaam se aaye the? Kis kaam?
Mera case hai isliye.
किस चीज़ का केस है?
कम्युनल वायलेंस का ही केस है.
तो आप कम्युनल वायलेंस के केस में?
नहीं नहीं, खाली डाला है, उनको पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है.
कि आपने बहुत सारे
द सेना आर नोटोरियस फॉर टारगेटिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज.
आपने खुद ही इंटरव्यू दिया था, आपने खुद बोला था कि आपने इंटरफेथ जैसे लव जिहाद के केस में आपने बहुत सारे किया है.
मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला है अगर कोई माँ बाप हमारे पास आता है तब हम लोग उसमें सुझाव करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करे तो आगे जाके प्रॉब्लम होने वाला है, माँ बाप का नाम ख़राब होने वाला है, बिरादरी का नाम ख़राब होने वाला है, कुछ तो ये क्रॉस होने वाला है, इसीलिए ऐसा काम करना नहीं है, ऐसा हम लोग.
ठीक है, समझ गया. पर ये मैं पूछता हूँ कि आपको इन सब लेडीज का रखवाला किसने बनाया?
अरे किसने बनाया ऐसा नहीं, मेरे दिल में है वो करने का, वो मैं कर रही हूँ।
आपकी बहन इसी तरह वो रास्ते पे जा रही है, अगर आप हमारे पास आए और हमें बताइए कि हमारी बहन हमारा मान नहीं रही है तो आप थोड़ा उसको बोलिए कर को, आप हमारे पास आए तो हम बोलना या ना बोलना।
नहीं पर जैसे ऐसे ही किसी रखवाले ने उस लड़के का सिर काट दिया, ठीक है, उसको लगा कि वो लड़की को बचा रहा है, तो ये गलत बात नहीं कि इसकी रखवाले में
हाँ। मेरे घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं मेरे घर वालों को या मैं मेरे बच्चों को मेरे बेटी को मैं हमारा संस्कृति हमारा धर्म।
रामाकांत कोंडुस्कर मे बी द लीडर ऑफ अ फ्रेंच हिंदू ग्रुप बट हिज व्यूज ऑन इंटरफेथ रिलेशनशिप्स आर ओपनली शेयर्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेन इन इंडिया। Men like Yogi Adityanath, the BJP chief minister of India's most populous state, Uttar Pradesh, and someone widely tipped as a future prime minister of the country. Adityanath has repeatedly said that so-called love jihad is a major threat to Indian Hindus. We contacted his office for comment, but he did not respond to our questions.
देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, वहां पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना।
आदित्यनाथ इज अ की एग्जांपल ऑफ हाउ डिवाइसिव इस्लामोफोबिक कंस्पिरेसीज लाइक लव जिहाद हैव बीन यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन। His rise has made Uttar Pradesh the epicenter of vigilante action in so-called love jihad cases. We've come to the city of Saharanpur to visit a special training camp being run by the Bajrang Dal, a Hindu youth organization with links to India's ruling party, the BJP. In response to questions from 101 East, the National Vice President of the BJP, Bijayant Panda, said the party was inclusive and had no problems with interfaith marriages per se, but also said that many Muslim men were deceptively marrying Hindu women. His claims were amplified by Kapil Moda, who runs this Bajrang Dal camp.
Bhai, line na kharab karo. Hey, mister, line na kharab karo.
ये जो हो रहा है यहाँ पे, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब उद्देश्य क्या है, क्या क्या सिखाया, क्यों कर किया है इसको?
देखिए, इसका उद्देश्य है कि आज के समय में देश के अंदर जो लव जिहाद की घटनाएं आपके भी सुनने में आ रही होगी दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं, लव जिहाद एक इतना बढ़िया षड्यंत्र है कि 2050 तक कैसे हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू लड़कियों को ही अपने प्रेम जाल में फंसा कर और उन्हीं से शादी कर, उनसे ही 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं मजबूत होकर और फिर ये उन हिंदू लड़कियों को सिखाते हैं कि आत्मरक्षा कैसे करनी है, लव जिहाद से कैसे बचना है, उन सबको जागरूक करते हैं।
पर जैसे हमने देखे बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें लोग दूसरे धर्म की शादी करते हैं खुशी से, पर आपकी जैसी संस्था बीच में आके वहाँ पर हल्ला मचाती हैं, शोर करती हैं कि गलत चीज़ हो रही है, जबकि वो आपस में खुश हैं,
ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। नहीं तो जो अपनी मर्जी से भी हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो 2-4 साल के बाद उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो एक बच्चे बनाने की मशीन उसको बना दिया जाता है वहाँ पर।
Women as baby making machines, objects of conquest to be monitored and controlled.
अग्रसर।
If love jihad sounds extremely patriarchal, well, that's because it is.
Love jihad का आपको पता होगा कि कैसे दूसरे समुदाय के लड़के हाथों में कलावर माथे पर तिलक लगाकर और समाज के अंदर निकलते हैं, कहाँ पे हमारी बेटियाँ कोचिंग करती है, कहाँ पे हमारी माँ बहन बेटियाँ जॉब करती है, कहाँ पे हमारी महिलाएं जिम में जाती है, कहाँ पे सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लेने के लिए जाती है, इन सब जगहों पर उन लड़कों के द्वारा फोकस किया जाता है। ये जो लव जिहाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये क्यों पैदा किया गया, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, सभी को पता होना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर मुस्लिमों के कितने देश हैं? कितने हैं बताओ, बोल का बताओ, ठीक है 72। ईसाइयों के कितने देश हैं? ईसाइयों के 56। और हिंदुओं के कितने देश हैं? और ये जो लगभग आज 85-90 करोड़ हिंदू बचा, इसको खत्म करने के लिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर खड़ा किया गया।
According to the latest census, Hindus make up almost 80% of India's population, and only 14% of Indians are Muslims. Interreligious marriages are extremely rare. 99% of Indians wed within their faith.
और इतना जरूरी क्यों है वो?
वो तो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस हिसाब से तो हिंदुओं की संख्या कम होती चली जाएगी, वो बढ़ते चले जाएंगे.
क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ आइडिया है कि
जी हिंदुओं कम करने के लिए कि हमारे देश में हिंदू कम हो जाए और ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दे.
इसके हिसाब से आप लगते हैं यहाँ पे इस इलाके में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं. मुसलमान कभी एक साथ हो ही नहीं सकता. जो भारत माता की जय नहीं कर सकता, जो श्री राम का नारा लगा सकता, जो कहता है कि मेरी गर्दन पे अगर तलवार भी आ जाए तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो कैसे एक साथ चलेगा आप बताइए.
तो फिर क्या इसका उपाय क्या है?
इसका उपाय हिंदू जितना अधिक से अधिक जागरूक होगा और जो तालिबानी सोच है उनको देश विरोधी उनको भगाया जाए यहाँ से, उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है.
और कहाँ पे जाएंगे वो लोग? इतने सारे लोग हैं, करोड़ों.
पूरे देश के अंदर केवल एक भारत ही ऐसा देश है जो हिंदुओं का देश है, बहुत सारे मुसलमानों के देश है.
पर जैसे हमारे संविधान के हिसाब से तो सेक्युलर कंट्री है कि ये सारे धर्मों का ही है.
भैया देश, मैं कह रहा हूँ देश सबका है, लेकिन जो तालिबानी सोच वाले लोग हैं उनके यहाँ जरूरत नहीं है.
To better understand the origins of so-called love jihad, we head to Kerala to meet Mohammed Sohail, the founder of independent news outlet Dool News. Seeing it as a threat to communal harmony, Sohail and his organization have been tracking the evolution of the conspiracy for more than a decade.
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ അത് ഒന്ന് പിറകിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ പ്രചരണം വീണ്ടും ആ പ്രചരണം എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നു, കയറി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം.
ദൂൾ ന്യൂസ് ഹാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ഹൗ ദി ഫസ്റ്റ് റൂമേഴ്സ് ഓഫ് സോ കോൾഡ് ലവ് ജിഹാദ് അപ്പിയർഡ് ഓൺ ഹിന്ദു നാഷണലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വിദ് ഇൻ പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ബൈ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ. ദേവ് ഓൾസോ റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് അലെജ്ഡ് കേസസ് ഓഫ് ലവ് ജിഹാദ് വർ ആക്ച്വലി കൺസെൻഷ്വൽ ഇന്റർഫെയ്ത്ത് റിലേഷൻഷിപ്സ്.
ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, അതുപോലെ പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് വീഡിയോ സംഭവങ്ങളും കൂടെ പിന്നെ ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ്
ജിഹാദ് പ്രസ്താവനയോടുകൂടി ലവ് ജിഹാദും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വ്യാജ ആരോപണങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2017
അനീസ് സമീർ കേസ്. ഹിന്ദു നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ലൈക്ക് ദി BJP have consistently struggled to make a political impact in Kerala, which has made the state a laboratory for them to test out divisive political strategies.
കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സംഘപരിവാറിന് കയറി വരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇഷ്യൂസിനെ അവർ കാണുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ കലാപങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ BJP ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു. ഒരിക്കൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രചരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെപ്പോലും ഹനിക്കുന്ന നിയമമായി തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
BJP rule states across India have enacted new anti-conversion legislation over the last couple of years, which the party claims it is doing to protect women against fraudulent conversion. The state which is most rigorously enforcing this new legislation is Uttar Pradesh. A strict anti-conversion law was passed here in 2020, and although the state claims it is not meant to target any community in particular, the numbers speak for themselves. Of the 86 people charged under the law in its first month, 79 were Muslims. Human rights lawyer Mashruf Kamal says the law follows a pattern of legalized discrimination against Muslims in Uttar Pradesh, an accusation that the BJP denies.
Shaadiyan jo ho rahi hain wo dono sides se ho rahi hain. Muslim ladkiyan bhi shaadi kar rahi hain udhar dusre ladkon se, to un pe to jo hai kanoon lagu nahi hota. Unhe ghar wapsi bataya jata hai ki ghar wapsi kar rahi hain ladkiyan. अब ये अगर इधर शादियाँ करती हैं तो उसे लव जिहाद बताया जाता है और ये खुलेआम बताया जा रहा है. पूरा प्रशासनिक अमला हो या आपके ये पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं वो सब उसका जो है समर्थन करते हैं. अब हम उस बारे में खोज ना करें कि कैसे कैसे हो रहा है. अब इससे बचना कैसे है, क्या करना है, अब ये अहम है सबसे.
For Mashruf, it means fighting for his community's rights in court. Today, he's meeting a client from a pivotal case. Shakib is possibly the youngest person to be charged under the anti-conversion law. His family say he was 16 when he was arrested and sent to jail for 6 months without a trial. Local police say he was trying to abduct and convert a Hindu girl.
इसमें जानकारी भी आया है कि एक व्यक्ति जो शाकिब ने है इसने अपना नाम सोनू बताया था और इस लड़की को अपना सोनू नाम बताकर इसे अपने प्रेम जाल फंसा लिया. उसके उपरांत उसे यहाँ से अपहरण करके ले गया, उसका धर्म परिवर्तन करवाने का इसने दबाव डाला.
शाकिब डिनाइज द एलिगेशंस.
रात का टाइम था, मैं दोस्त के घर रुका हुआ था, वहाँ रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बाहर घूमने के जैसे निकल गया, मैं वहाँ पर लड़की खड़ी थी उसके पास साइकिल थी, उसकी साइकिल में पंचर हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया कैसे से मैं परेशान हूँ, मुझे मेरे घर तक छुड़वा दो। मैंने कहा ठीक है, लड़के कुछ आ गए वे छेड़ने लगे हैं, फिर वहाँ लोग आ गए वे हमें चोर बताने लगे, ये चोर है, चोर बता के हमें मारने लगे गए, उन्होंने वो हमें बहुत मारा, मुझे तो विश्वास ही नहीं था मैं जिंदा भी रहूँगा। फिर मैंने वहाँ मैंने बतेरा कहा, मुझे रिसवाल ने फट्टे वट्टे भी बजाए उस पर, बजाने जाने के बाद उनका तू लड़की को अपहरण करके ले जा रहा था, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, लड़की से पूछो, मानने मानने लगे पुलिस वाले, ये कहने लगे उनके तेरे साथ और भी लड़के हैं उन्हें भी बता कौन कौन है, इस बात को उन्होंने बहुत मारा, सभी परेशानी हुई वहाँ, सही से ना सो पाता था ना सही से खा पाता था, हर टाइम रोते रहता मैं, एक एक पल मेरा बहुत मुश्किल से कटा है वहाँ। जिस चीज़ जो चीज़ मैंने करी नहीं, मुझे उस चीज़ की सज़ा मिल रही है, उस चीज़ भुगतने पड़ रहा हूँ मुझे, जो चीज़ मैंने करी नहीं, जिस चीज़ के बारे में मैंने सोचा नहीं करने के, चीज़ की सज़ा मिली।
Shakib was jailed despite the girl clearly stating to local media that she didn't know him and that he made no attempt to change her religion.
अच्छा ये जो कह रहे कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा लेता था वो लोग, ये क्या बात है? झूठा बात था, ऐसी कोई बात थी?
If convicted, he faces up to 10 years in prison. His mother Shanjida says the family is devastated by the accusations.
हमारे लड़के को तो फंसाया गया, जब लड़की भी मना कर रही, उसका बाप भी मना कर रहा, प्रधान उनके गांव का मना कर रहा, मेन जो प्रधान है वो मना कर रहा, तो फिर हमारे लड़के पे ये इल्जाम क्यों लगाएगा? हम तो इन्हें जानते भी नहीं क्या चीज़ है ये लव जिहाद क्या होता। उस टाइम पे बहुत माहौल गलत चल गया, मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, ये देखो ना भी कोई कर रहा जब भी उसे कसूरवार माना जा रहा।
Shakib has to travel 5 hours to attend monthly court sessions or his bail could get cancelled. As an apprentice welder working in another state, he earns just $65 a month and the trial is crippling him financially. Today, after hours of waiting, the other side once again failed to show up. Even if Shakib is cleared, it could take him years to be acquitted. Like for many poor people navigating India's legal system, sometimes the process itself is the punishment.
क्योंकि ऐसा हो रहा है कि यहाँ असल में किसी भी केस में आप फर्जी केसेस में या किसी भी तरह के केस में पुलिस किसी को जेल भेज देती है तो भले ही बरी हो जाए, वो निकल आए, जेल से छूट जाए सारी चीज़ों से, लेकिन पुलिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है कि आपने ऐसे क्यों किया था। लेकिन मुझे उम्मीद है माहौल सुधरेगा भी, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है माहौल बिगाड़ने वालों की, बहुत थोड़ी सी तादाद है, लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग है, पावर में है, आज है कल नहीं होंगे, डेमोक्रेसी है, भले ही ये ख़त्म करने की कितनी कोशिश कर लें इतना आसान नहीं है।
कमाल इज़न्ट द ओनली वन फाइटिंग बैक। विद मोहम्मद सुहेल ऑफ दूल न्यूज़, आई एम मीटिंग अथीरा एंड शमीम, an interfaith couple from Kerala who have become activists against so-called love jihad. The couple faced harassment from Hindu nationalist trolls after their names were posted on a Kerala government website. Their activism led to the government scrapping its policy of publishing names of interfaith marriage applicants online.
It's basically my parents with us, and we are all color coordinated, it's green and maroon. It's not this easy for most of the couples who are getting into interfaith marriage, right? Because there is a lot of societal pressure. There's also, it's not just society, but you know, most of the time the parents themselves are not in agreement. So
Athira and Shamim chose to marry through the Special Marriages Act, which allows interfaith couples in India to wed without changing their religion. But the act has controversial provisions. Couples need approval from marriage officers and they must wait at least 30 days to get it. During this time, their names are publicly displayed, making them potential targets. Atira and Shamim's names and addresses were published on social media, and they were put on so-called love jihad lists circulated on WhatsApp.
They have basically said that all women are naive, no one can use their brain, they can be easily manipulated and they can be brainwashed. This is the narrative, and that really irks, right? Like, because, you know, you throughout your life as a girl, as a growing up girl and as a woman, you are constantly living in a very extremely patriarchal society, which is always having a very misogynistic lens at the way they are looking at you grow, right? Like, so, and you've constantly fought all this, you know, you're fighting and you're fighting and you've gotten somewhere. And again, when you are you want to decide who your partner for life should be, again, they are basically saying that no, you have no agency because you can't, you don't, you are not intelligent enough to make the choice. Let us speak to your parents.
So you decided to respond not only by going ahead with this, but also you posted about what happened to you, and that led to some change.
Yes. Yes.
Why did you decide to?
Using our applications, they were able to intimidate and instill fear in a lot of interfaith couples who might have wanted to go through this process, which was really...
they were creating fear.
Yeah, that fear, right? And that is why we decided that, okay, this has to stop, which is why we thought that acknowledging privilege is one. But what do we do with this privilege that we have? Which is why we wrote about it and Honorable Minister brought a change. But we didn't want to stop there because it's not just a problem of, you know, having these applications on a digital space. It's about the act in itself, how it basically infringes into freedom of matrimonial alliance, which is why we have filed a petition in the Supreme Court to amend the Special Marriage Act. When you don't have this 30-day clause in any other marriage act, why only for interfaith couple?
If successful, Athira's petition could have a radical impact on the fate of hundreds or even thousands of interfaith couples across India. Currently, in order to get married, many of them have to run away from home and go into hiding. They must then wait months for their marriage applications to be approved. This young couple is one of them. They've just arrived in New Delhi after running away from their homes in Kerala. In this case, it's the boy who is Hindu and the girl Muslim. But given the widespread opposition to interfaith marriage amongst both communities, they still face a threat to their lives.
We were in love since almost 7 years. And we would like to continue it forever. Then we have to take such a risk. And it's a do-or-die situation.
When the girl's parents found out about the relationship, they tried to forcibly marry her to another man.
I am afraid of his life. They may harm him. They don't do anything on me, but they harm our community people also try to harm him because he is from another religion. So we came safer place. We think this is far from our native, so it is safe.
They're currently hiding in the offices of Dhanak, a Delhi-based NGO that supports interfaith couples.
And we chose Special Marriage Act since we respect each other, each other's culture, celebrations, and every holy things like Quran, Gita. We respect each other. So we want to convert our faith for the purpose of marriage. So we chose Special Marriage Act.
The couple will need to be in Delhi for at least 2 months. It's too risky for them to stay in this office, so they will soon be moved to secure government safe house. Asif Iqbal, Dhanak's founder, is now campaigning for the establishment of safe houses for such couples across India. He wants the young lovers from Kerala to help with the campaign.
You have done a civil marriage. Is it correct or incorrect?
Feel correct.
Yeah, you feel correct. You feel correct. Why there is a hesitation that what we have done and we are talking about it is wrong? It should be removed. If you think that it is not only limited to us, this message should also go to not to the couples, to also to the society and those people who are stopping such kind of relationship. It can be only possible if we talk about it. It's like we tell our story in our words. And those people who are against it should respect the constitution of India, the constitutional right given in by India, rather than making it religious. Respect the decision taken by a female, an adult female, educated female. That is the message.
A message that is often drowned out by deceptive and dangerous conspiracy theories like love jihad. This brave young couple, though, are an antidote to the hate and division. As they fight for their right to choose their life partner, they are proof that India's different communities can be united by love.